सह व अपि भी ही निस्संदेह अजया बकरी के साथ कूप लब्धया कुएं से मिली कालम समय के लिए बहुतिथम दीर्घकालीन भद्रे हे प्रिय पत्नी कामे काम इच्छाओं सहित न नहीं अद्यपि आज तक तुष्यति संतुष्ट होता है. ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेका अनेक वर्षों तक भोग करता रहा किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो वह काम वासनाओं से लिप्त रहता है जिन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन है. अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथा कथित घर को छोड़कर जंगल चला जाए. पंच शोरधवम वनम व्रजेत. मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है. घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है. ओम अज्ञान अतिमेरांधस्य ज्ञानंजना शलाक्या चक्षुरु मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने इस लायक हमें समझा कि श्रीमद् भागवतम जो एक महान ग्रंथ है उसके ऊपर कुछ चर्चा कर पाए. वैसे तो हमारा इतना बुद्धि नहीं है, क्योंकि जब से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए तब से ज्यादातर खाना पीना और प्रसाद के बारे में ही चर्चा हुई है हमारी, क्योंकि लगभग पिछले 10 साल से किचन में रहते रहते शायद श्रीमद् भागवतम का उतना ज्ञान ना हो, लेकिन पोहा उपमा दाल चावल सब्जी कैसे बनानी उसके ऊपर विषय पे बहुत चर्चा हुई है. तो हम जानते नहीं हैं कि ऐसे महान ग्रंथ के ऊपर हम क्या टीका कर पाएंगे, लेकिन एकमात्र ये विश्वास जरूर है कि अगर आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद दें तो कुछ चंद शब्द इस विषय के ऊपर कहने का प्रयास करेंगे. आपका आशीर्वाद है ना? बहुत बहुत धन्यवाद. पंजाब से हैं, कभी कभी तो इच्छा होती है कि पंजाबी में बोले, और बैठे भी पंजाबी बाग में है. ए हुई ना गल. लेकिन हर स्थान की कुछ मान्यताएं मर्यादाएं साथ में रखते हुए उनको समझते हुए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं. श्रील प्रभुपाद जी की असीमित कृपा हम सब लोगों के ऊपर है कि जिस प्रकार से विषय वासना के जीवन की तरफ एक एक कदम हम सब लोगों का किसी ना किसी प्रकार से बढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे ग्रंथ और ऐसे श्लोक जब वैष्णवों के माध्यम से सुनते हैं तो उस पथ पर ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेक लग जाती है, क्योंकि यहां पर महाराज याति की ये जो कथा है, बेसिकली श्रीमद् भागवतम अलग अलग जो किरदार हैं, अलग अलग वैष्णव हैं, उनके माध्यम से हमारे को क्या सही है सत्य में और क्या गलत है उसके बारे में विचार करने के लिए हमको मजबूर कर देती है। महाराज याति जैसे ये जो कथन श्रीमद् भागवतम में है, एक बार नहीं कई बार आए हैं। महाराज पुरुरवा की कथा आती है और पहले स्कंद से लेकर चाहे हम अंत तक चले जाएं, कहीं ना कहीं हमारे को इस प्रकार के कथन और ऐसे इस महान ग्रंथ से ऐसे कई लेसन्स हमारे को पाठ मिलते हैं कि कभी भी अगर कोई ये सोच रहा है कि संसार में भोग करते 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 एक दिन हम इतना थक जाएंगे कि ऑटोमेटिकली भोग करने की इच्छा जो है हमारे हृदय से निकल जाएगी, तो ये जो श्लोक है ये कहता है कि सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। हम किसी भी हालात में भोग करते करते उससे ऊब नहीं जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। स्वेच्छा से वी हैव टू फोर्स अवर सेल्फ, हमारे को अपने आप को भोग को धक्का मारकर वहां से हमारे को निकलना होगा कि ये जीवन मेरे लिए नरक की तरफ मेरे को लेकर जा रहा है। एक और एलिगोरिकल स्टोरी श्रीमद् भागवतम में अगर हम पढ़ें तो चौथे स्कंद में आती है, पुरंजन जी की। ये जो यहां पर महाराज याति बता रहे हैं वो भी एक प्रकार से एलेगोरिकल स्टोरी है कि किस प्रकार से वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि कैसे मैं इस संसार के भोग में फंस गया। और वहां पर भी महाराज पुरंजन की कथा में भी, जब महाराज पुरंजन जो स्वयं में पुरंजन हम ही हैं, जो इस संसार में भोग में इतना फंस जाता है, खास करके जीव पुरुष और स्त्री के संबंध में इस प्रकार से फंस जाता है कि वो जब अपने आप को ये मान बैठता है कि मैं पुरुष हूं और इस संसार में हर चीज मेरे भोग की वस्तु है, उस समय जिसको उसने अपना भोग माना होता है, पुरंजन जी के कथन के अंदर एक 29वें अध्याय में चौथे स्कंद में कथा आती है कि किस प्रकार से उस भोग के बारे में सोचते सोचते वो खुद एक दिन भोग बन जाता है। उसको अगला जीवन किसका मिलता है? स्त्री का। जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं ये मेरे भोग की वस्तु बननी चाहिए, एक दिन जीव उसी के वही भोग स्वयं बन जाता है। तो हम सब लोगों को जीवन में ना एक चॉइस दिया गया है कि हमारे को करना है तो क्या करना है, क्या भोग की इच्छा को करते करते स्वयं भोग बनना है या इस भोग को धक्का मार के हमारे को अग्रसर होना है भगवत धाम के पथ पर। हरे कृष्ण। इसी ग्रंथ के अंदर आगे चलकर एक कथा आएगी भगवान राम की, जिसमें भगवान श्री राम स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कि कैसे जीव को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और कैसे उसको भोग से दूर रहना चाहिए, उसमें एक बड़ा सुंदर वृतांत आता है। प्रयास करेंगे कि अगले 20-25 मिनट में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। देखिए, भोग से मुक्त होने का एकमात्र अगर कोई तरीका वो है तो एकमात्र तरीका है भगवान की कथा को सुनना। जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे तब तक ये भोग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर से छूटेगी नहीं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गो इल टुगेदर। कहने का भाव, भोग और भक्ति का जो मार्ग है वो एक साथ नहीं चलते। या तो हमको भोग को पकड़ना होगा या भक्ति के मार्ग को पकड़ना होगा, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को। चुनाव हमारे को करना है। अगर जीव सोचे कि एक साथ इन दोनों नामों पर बैठकर मैं संसार से मुक्त हो सकता हूं तो सॉरी, ऐसा नहीं है। और कहीं पर भी शास्त्र ने इस चीज को भी बार बार जोर नहीं दिया कि गृहस्थ जीवन एक तरह से बहुत बुरा है। अलग अलग स्थानों पर इसके बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन अधिकांश जो जनसंख्या है, 99% जितने भी लोग हैं, 99% जो लोग हैं वो गृहस्थ जीवन में हैं। और लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि हमारे को ये जो गृहस्थ का जीवन है वो वान जो वर्ण आश्रम के हिसाब से 25 साल के लिए दिया गया है, रेगुलेशन में जीने के लिए दिया गया है। एक बार अपनी आप शिक्षा आदि को पूर्ण करके गृहस्थी में कदम रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक बार कदम रख लिया तो ऐसे पांव जमा लिए कि यहां से बाहर निकलना ही नहीं है। 25 साल के बाद हमारे को वहां से बाहर निकलने का जी तोड़ प्रयास करना चाहिए। और पहले के समय में जब लोग वानप्रस्थ आश्रम को लेते थे तो जंगलों की तरफ जाते थे। अभी तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने का भी प्रयास करता है तो बॉम्बे जाता है, दिल्ली आता है। ये कोई स्थान है? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले के समय में एक सेक्लूडेड बहुत दूर आवास स्थान होते थे। गुरुकुल इस प्रकार से बनाए जाते थे जहां पर किसी भी हालात में आपको भोग दिखे भी नहीं। अभी हम लोग बॉम्बे दिल्ली जैसे ऐसे मेट्रो जो सिटीज हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर बैठे हैं जहां पर पग पग पर आपको भोग दिखता है और सुलभ प्राप्त है। एक बार हमारे को किसी ने पूछा कि प्रभु जी, आपका कृष्ण भावना में कोई रियलाइजेशन? मैं बोला, रियलाइजेशन तो है नहीं, लेकिन इस प्रोसेस के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है। बोले, कैसे? बोले, हमने कहा देखिए, मुंबई जैसे स्थान में या दिल्ली जैसे स्थान में ये कपड़ा पहनना असंभव कार्य है। मैं तो आपको अपनी तरफ से तो कंफर्म कहता हूं, इसके लायक नहीं है हम। लेकिन प्रभुपाद जी वैष्णवों की और इस प्रोसेस की शक्ति इतनी है कि सालों साल भक्त लोग इस स्थान ऐसे स्थानों पर रहकर भी धीरे धीरे एक एक कदम जो है वो भगवत धाम की तरफ बढ़ा रहे हैं, भक्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ये सामान्य नहीं है, लोगों को देखकर चक्कर आ जाता है। पहले के समय में लोग हिमालय की तरफ जाते थे, कोई मुंबई थोड़ी निकलता था या दिल्ली थोड़ी निकलता था आश्रम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये देखिए, प्रोसेस की शक्ति को समझने का हम प्रयास करें। हाँ, एक बार आपको उसको धक्का मारना पड़ता है और शायद अपना हाथ भोग को हमेशा के लिए इस प्रकार से रखना पड़ता है, सॉरी एक जीवन मेरे को राधा कृष्ण की सेवा करने का मौका दीजिए। माया से प्रार्थना करनी पड़ती है, एक जीवन, हजारों लाखों जीवन आपके आश्रय में बिता दिए हमने, कृपा करके हे माया देवी। अगर हम माया देवी के सामने ऐसे अकड़ जाए ना कि देखो मैंने माला पकड़ ली है और अभी मेरे को छूना मत, तो बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, तू जानता मैं कौन हूं। उसके सामने हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे। माया देवी वैसा ही ग्रस्तों के जीवन में भी, कि अभी हमारा 25 साल हो गया, अभी किसी ना किसी प्रकार से अपने गले की चाबियां, अपने जीवन की चाबियां उनके हाथ में दीजिए, घर परिवार की चाबियां उनके हाथ में दीजिए और धक्का मार के निकलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि इतना भोग करो इतना भोग करो, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, संभोग से समाधि, इतना भोग कर लो कि भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये भोग कैसा है, इट्स लाइक कैंडल लाइट, जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, एक बार एक मोमबत्ती को जला दिया जाए 100%, जब तक उसके अंदर मोम है उस मोम के समाप्त होते ही उसका भी जीवन समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोग कहते हैं ये जो भोग करना है वो मोमबत्ती की तरह है, आप भोग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन ऐसा थ्रेशहोल्ड पॉइंट आ जाएगा कि आप भोग करने की इच्छा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाओगे, नो भोग मोर, अभी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोले सॉरी, ये मोमबत्ती की तरह नहीं है भोग, ये भोग किस प्रकार से है, जंगल की दावा अग्नि की तरह है, जिसका तो पहले मालूम ही नहीं पड़ता वो पैदा कैसे हुई, और एक के बाद एक जंगल को जलाते हुए वो राख करती जाती है। ऐसे समय में जब जंगल जैसी आग हो और उसको कंट्रोल कर पाना असंभव हो, तब सुबह सुबह उठकर हम कहते हैं संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घनागनत्वम, जब तक गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं पड़ती वहां से शॉवर्स ऑफ मर्सी, वहां से कृपा नहीं बरसती, और उस कृपा जो बरस रही होती है उस कृपा के अंदर हम हाथ नहीं देते भगवान को कि मेरे को भगवान बचाओ, तब तक ये भोग समाप्त नहीं होगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी में आगे रामायण की एक छोटी सी कथा आपको बताते हैं, जिससे जब भगवान राम के संबंध में जो लोग हैं उनके चरित्र को समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भोग करने की इच्छा को लेकर कैसे तपस्या किया और किस प्रकार से उस भोग की इच्छा को अपने अंदर से विरक्त किया। देखिए प्रोसेस सिंपल है, भोग से निकलने का प्रोसेस सिंपल है, तपस्या करना पड़ेगा हमें, जैसे प्रभुपाद जी बोले स्वेच्छा से, जब हम वॉलेंटरीली किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं ना वो तपस्या है। रामायण में ये कथा आती है कि जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम आदि को सबको लेकर मिथिला पहुंचते हैं, तो मिथिला में जब महाराज जनक जी को ये मालूम पड़ता है कि ऐसे महान ब्रह्म ऋषि हमारे द्वार पर आए हैं, तो अपने राजपाट को छोड़कर भागते हुए उनका दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, और उनके साथ उनके एक हेड प्रीस्ट जो सबसे बड़े ब्राह्मण थे उनके संग में सतानंद जी, वो वहां पर आ जाते हैं। सतानंद जी जब विश्वामित्र मुनि को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, महाराज जनक उनको प्रणाम करते हैं और उनके संग में बैठ जाते हैं, और महाराज जनक उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आचार्य मुनिवर बताइए हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और बहुत सारे साधु संत, जब विश्वामित्र मुनि जी चलते थे तो अकेले नहीं, बहुत सारे साधु संत उनके साथ चलते थे, तो वो उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो इतनी ही देर में सतानंद जी की दृष्टि जब विश्वामित्र जी के साथ मिलती है तो कोटि कोटि धन्यवाद और उनका प्रणाम करते हैं। सतानंद जी कहते हैं आज आपकी कृपा से मेरे जीवन, मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया। उन्होंने कहा मैं उस व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूं, उस महान पुरुष के दर्शन करना चाहता हूं जिनकी कृपा से अभी कुछ ही समय पहले मेरी माता जो है अहिल्या जी, उनका जो है उनको तारा गया है, उनको उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला गया है जिसको वो कई हजारों सालों से भुगत रही थी। तो विश्वामित्र मुनि राम जी की तरफ इशारा करते हैं, कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके चरण स्पर्श होते ही आपकी माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। राम जी का दर्शन करके, अभी तक उन्होंने राम जी का दर्शन नहीं किया था। कहते हैं जब राम और लक्ष्मण मिथिला की धरती पर कदम रखे और गलियों कूचों से और नगर के अलग अलग एरिया से गुजर रहे थे, लोगों के हृदय जो हैं वो पूरी तरह से धक धक कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने सुंदर पुरुष नहीं देखे थे। सीता मैया को तो लोगों ने देखा था, वो इतनी सुंदर थी, लेकिन पुरुष इतना सुंदर हो सकता है ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया था। और अभी जब सतानंद जी और जनक जी उनको देख रहे हैं तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए भगवान का इतना सुंदर रूप को देखकर, और वहीं पर बैठ गए और उनको प्रणाम किया। और सतानंद जी ने राम जी को कहा, राम जी आपका तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से आज मेरी माता का उद्धार हुआ है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मैं ऋणी हूं विश्वामित्र मुनि जी का, जिनकी कृपा से आप उस स्थान तक पहुंच सके। देखिए, एक आचार्य और गुरु जो है वो भगवान को भी इस संसार में किस किस का उद्धार करना है उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान डायरेक्ट कभी भी कृपा प्रदान नहीं करेंगे। उन्होंने अहिल्या का भी उद्धार जो है, भगवान उस तरफ जाने नहीं वाले थे। रामायण कहती है कि लॉर्ड राम टुक दी डी टूर, अलग से रूट बनाया विश्वामित्र मुनि ने कि मिथिला में जाने से पहले पहले यह उद्धार करना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान राम जिस तरफ विश्वामित्र मुनि चल रहे थे उसी तरफ वो भी चल रहे थे, उनका अपना कोई प्लान नहीं था। भगवान अपने सब प्लान्स को समर्पण कर देते हैं गुरु के आगे, और हम सोचते हैं कि हम अपने प्लान से चलेंगे। ये छोटी सी कथा बताती है कि भगवान अपना प्लान साइड पर रखते हैं और अपने सारे प्लान्स को आचार्य पर आश्रित कर देते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इससे भगवान हमारे को कितना कुछ सिखाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि का बार बार धन्यवाद करते हैं और कहते हैं आज मेरे से रहा नहीं जाएगा कि अगर मैं विश्वामित्र मुनि का गुणगान ना करूं, क्योंकि आज वो समय है, सब लोग यहां पर बैठे हैं, आज मैं बताऊंगा ये विश्वामित्र मुनि कौन है। भगवान राम कान लगाकर सुनने लगे, द ग्लोरीज ऑफ विश्वामित्र मुनि, कौन है ये विश्वामित्र मुनि। उन्होंने अभी तक जितना समय विश्वामित्र मुनि को देखा था, भगवान तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, लेकिन ऐसे भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, कान लगाकर बड़े ध्यान पूर्वक सतानंद जी से विश्वामित्र मुनि की कथा सुन रहे हैं। आप सुनने के लिए तैयार है? कितना समय है हमारे पास मालूम नहीं, लेकिन शॉर्ट में प्रयास करेंगे, कथा बहुत लंबी है। विश्वामित्र मुनि जी के बारे में बताते हैं कि ये चंद्र वंश में प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, गादी सूत इनको कहा जाता था। महाराज पुरुरवा के वंशजों में से इनका नाम आता है। जहानु ऋषि भी इन्हीं के कुल में से थे, और इनके पिता बहुत बड़े राज्य के मालिक थे। जब वो चले गए तो विश्वामित्र मुनि को उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया। बहुत अच्छे राजा, एकदम सुंदर आचरण, और बड़े सुंदर रूप से अपने राज्य को संभाल रहे थे। एक दिन अपने कुछ लोगों के साथ, सैनिकों के साथ, उन्होंने एक पूरा अपने राज्य का टूर करने का सोचा कि हमको देखना चाहिए कि हमारे राज्य के अलग अलग एरियाज में क्या कार्य हो रहा है। तो ऐसे चलते 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 बहुत दूर तक निकल गए और एक वन में पहुंच गए। बहुत प्यास लग गई, अपने एक सेवक को कहा कि थोड़ा कहीं पर पानी आदि का प्रबंध किया जाए तो अच्छा है। तो सेवक ने थोड़ा ढूंढ कर आया तो उनको कहा कि यहां पर कुछ आश्रम हमको दिख रहे हैं, वहां पर हम लोग चलते हैं। वहां पर गए तो आश्रमों में बहुत बढ़िया सुविधा नहीं थी, तो उनको लगा कि ठीक है, थोड़ा पानी भी मिल जाए तो बहुत है। जब बहुत बड़ी एक सेना के साथ वहां पर पहुंचे तो हलचल मच गई। तो वो आश्रम वशिष्ठ ऋषि जी का था। वशिष्ठ ऋषि जी बाहर निकलकर आए और उन्होंने देखा कि राजा विश्वामित्र वहां पर पधारे हैं। उनको मिले, उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया, स्वागत किया उनका और उनको कहा कि राजन बताइए हम आपके किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से स्वागत किया विश्वामित्र मुनि जी का वशिष्ठ ऋषि जी ने, उनको लगा कि बहुत हो गया, इतना ही हम चाहते थे कि कहीं पर पहुंचे हैं, somebody should respect। तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने कहा आप थोड़ा समय पानी पिला दीजिए और हम यहां से चले जाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि को वशिष्ठ ऋषि जी कहते हैं पानी क्यों, हम फीस्ट खिलाते हैं आपको, आप यहां पर अपनी सेना के साथ आए हैं तो हम आपको फीस्ट खिलाएंगे, किचन वाले हैं थोड़ा फीस्ट के बारे में तो बोलेंगे हम भी, पूरी हमारी परंपरा कृष्ण प्रसादम पर आधारित है। तो उन्होंने कहा आप यहां से ऐसे मत जाइए, हम आपके लिए फीस्ट तैयार करते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक दाना आपको देंगे और खाकर आप निकल जाइए। उन्होंने चारों तरफ जब देखा ये साधु पक्कड़ बाबा हम लोग को क्या खिलाएंगे, इनकी क्या इतनी शक्ति की इतनी बड़ी सेना, इतने सारे लोग क्षत्रिय हट्टे कट्टे कोई दो चार रोटी खाने वाले नहीं, और उस युग के कलयुग के जीवों को तो दो रोटियां नहीं पचती, उस समय के लोग। तो चारों तरफ देखा, ना कोई चूल्हा ना कोई चौंका ना कोई किचन, और ये बोल रहे हैं कि अभी के अभी आपको फीस्ट कराते हैं, कोई बड़ा किचन भी तो दिखना चाहिए, कोई मेगा किचन दिख ही नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं 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 छोड़ दीजिए, आपसे आपसे होगा नहीं। विश्वामित्र मुनि बोले आप हमारे को 5 मिनट तो दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। बोले 5 मिनट में इतने लोगों का भोजन कैसे बन जाएगा, पूछिए सुंदर कृष्ण प्रभु से। कोई बोल देता है कि प्रभु जी हम 50 लोग आ रहे हैं तो हमारे हालत का कंपनी शुरू हो जाती है कि अरे 5 मिनट पहले बोला 50 लोग आ रहे हैं, अभी हमारी खिचड़ी बची आधा डब्बा, कैसे मनाएंगे अभी इनको। तो हम प्रभु का दुख समझ सकते हैं जैसे कभी कोई फोन कर देता है। लेकिन उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए। उन्होंने उनके पास एक गाय थी जो उनको यज्ञ से प्राप्त हुई थी, उस यज्ञ से प्राप्त गाय जो भगवान विष्णु ने उनको सेवा करने के लिए दी थी, कामधेनु गाय जिसका नाम था शबल। शबल को पुकारा और कहा शबल ये सारी सेना को बेस्ट ऑफ द फीस्ट दो, आज तक जो तुमने नहीं ना दिया वो दो। उसने कहा जैसा हुक्म मेरे आका, आप बताइए क्या करना है। तो एक्चुअली रामायण में बताया जाता है कि ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े कटोरे निकल कर आए और उसमें बहुत सारा पकवान था, थालियां की थालियां सजती हुई उनके थनों से निकलती आ रही हैं, एक के बाद एक थाली हजारों की मात्रा में आ रही हैं और सबको प्रसाद वितरण किया जा रहा है, क्योंकि स्वयं ये जो गाय है भगवान विष्णु की दी गई है। और चारों तरफ जब लोग बैठे थे और उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा था, जैसे जैसे एक एक निवाला, एक एक व्यक्ति, एक एक सैनिक, एक एक जितने भी उनके महान मंत्री आदि उनके साथ थे, वो खा रहे थे, बोले वाओ व्हाट ए फीस्ट, राजन आज तक आपके राज्य में भी ऐसा खाना नहीं मिला। अभी राजा के तो पसीने छूट रहे थे कि इतना बढ़िया खाना लोग मेरे को बोल रहे हैं, और पहले हम सोच रहे थे कि यहां पर कुछ मिलने वाला है या नहीं। वो खाते खाते सिर्फ ये सोच रहे थे कि हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो, कैसे सकता है कि इतना कुछ ये एक साधु दे रहा है। वशिष्ठ ऋषि के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो सबने जब वाह 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 की तो उसके बाद उनको खाना पूरी तरह से हजम नहीं हो पाया। वशिष्ठ ऋषि जी के सामने विश्वामित्र मुनि कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ ऋषि जी आपने हम सब लोगों को इतना बढ़िया भोज प्रसादम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी आपसे इच्छा है, एक मांग करते हैं, क्योंकि स्थान के राजा हैं, ये जो गाय है बस वो हमको दे दीजिए, ये गाय हमें दे दीजिए, आपको क्या चाहिए इसका। तो वहां पर तो वशिष्ठ ऋषि जी अड़ गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, अरे भगवान विष्णु ने ये यज्ञ आदि करने के लिए मेरे को गाय दी है, मेरे को घी आदि चाहिए, दूध आदि चाहिए, दही आदि चाहिए यज्ञ करने के लिए, उसके लिए मेरे को ये गाय दी गई है, आप मेरे से मेरा सब कुछ मांग लो, वो मैं दे सकता हूं, लेकिन ये शबल को नहीं दे सकता। बोले ठीक है, इस धरती पर जो भी चीज है इस राज्य के अंदर वो एक राजा के अधिकार में होती है। वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा रुकिए, जरा देखिए, क्या ये जो शबला है इसके पांव इस धरती के ऊपर लगते हैं? अगर तो लगते हैं आप ले जाइए। तो जब उन्होंने देखा शबला को, तो शबला एक इंच ऊपर रहती थी इस धरती से, कभी टच ही नहीं करती थी इस धरती को। उन्होंने कहा सॉरी, इस आर्ग्यूमेंट में आप फेल हैं, आप लेकर नहीं जा सकते। बोले राजा का एक और अधिकार होता है कि वो छीन कर लेकर जा सकता है। अभी वो कुछ नहीं कर पाए, उसको छीन कर लेकर जाने लगे। वशिष्ठ ऋषि जी के पास भागती हुई शबला वापस आई, नहीं जाना चाहती मैं इसके साथ, आप इसको रोकते क्यों नहीं है? बोले दो कारणों से, पहले ये राजा है, भगवान का इनके ऊपर कृपा होता है, और अगर राजा कुछ कहे तो उसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता, दूसरा मेरा अतिथि है, मैं ना नहीं कर सकता। उसने बोला ठीक है, आप चार्ज को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है तो मैं चार्ज लेती हूं। शबल ने अपनी शक्ति के माध्यम से ऐसी सेना का विस्तार किया, जो खाना दे सकती है ना वो डंडा भी दे सकती है, तो उसके पास क्या नहीं था। बोली मैं फीस्ट करा सकती हूं तो निकाल भी सकती हूं सब डंडे मार मार के। तो उन्होंने ऐसा विस्तार किया कि सारी की सारी सेना को समाप्त करके रख दिया। विश्वामित्र मुनि सोच के हैरान, ऐसी शबला अगर मेरे को मिल जाए तो कितना फायदा हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते थे। 100 पुत्र उनके साथ थे उनके, उन पुत्रों ने सोचा इसकी जड़ जो है, ये पूरा पंगे की जड़ है वशिष्ठ ऋषि, इन्हीं को समाप्त कर देना चाहिए। वो मारने के लिए जैसे वशिष्ठ मुनि को के सामने पहुंचे, वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा हुम, वो भी 0। अभी विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं ना तो सेना ना बच्चे, अभी मैं इधर क्या करूंगा, छोड़ दिया सब कुछ, भाग गए वहां से। लेकिन इतना हृदय के अंदर मन में ये विचार चल रहा है, कैसे हो गया, क्या शक्ति है, एक राजा के सामने ब्राह्मण की शक्ति शून्य है। घर परिवार को त्याग कर इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि एक दिन बदला लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। शिवजी की इतनी आराधना की, इतनी आराधना की कि जब भगवान शिव प्रसन्न हुए उनसे, उन्होंने कहा मांगो वत्स, क्या चाहिए? बोले आप जानते हो। बोले फिर भी आप बताइए। बोले ऐसी शक्ति का संचार, ऐसे अस्त्र शस्त्र मेरे को प्रदान करो कि जो भी इन अस्त्र शस्त्रों के सामने आए वो समाप्त हो जाए। तथास्तु, निकले वापस, बैक टू विश्वामित्र मुनि जी। वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में वापस गए और वहां पर जाकर कुछ बोला नहीं, अपने एक अस्त्र से जितनी कुटिया थी साधुओं की सबको जलाकर राख कर दिया और हंसने लगे कि वशिष्ठ ऋषि समाप्त। थोड़ी देर में धुएं को छांटते हुए वशिष्ठ ऋषि जी सामने आए। वो बोले इसके लिए इतनी तपस्या की, ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए, ये तो समाप्त ही नहीं हुआ। तो उसने कहा, उन्होंने बड़ा समझाने का प्रयास किया कि छोड़ दो, क्या बचपना कर रहे हैं आप, अरे इतना शक्ति लेकर आए उसको सही दिशा में लगाइए। वो बोले आप मेरे से युद्ध करो, मेरे को ये बातें पसंद नहीं है। वशिष्ठ ऋषि जी को जब ये कहा, वशिष्ठ ऋषि जी बोले ओके, जस्ट बी रेडी, हो जाओ तैयार। उन्होंने अपना डंडा, जो ब्रह्म दंड जो ब्रह्म ऋषि को मिलता है, वो सामने रखा और उन्होंने बोला चालू करो, युद्ध चालू करो अभी। एक के बाद अस्त्र शस्त्र को विश्वामित्र मुनि जी निकाल रहे हैं, एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र निकल रहा है और वो डंडा सामने है, वो डंडा खाता जा रहा है, सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। उनका सब कुछ, जितने भगवान शिव ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए थे ना, बैग खोल के देखा सब खाली, एकमात्र एक शस्त्र बचा था, ब्रह्मास्त्र। देवी देवता कहने लगे विश्वामित्र मुनि मत, इसको मत चलाइए, सारे संसार को राख करके रख देगा। बोले राख होता है तो हो, अपना प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। अडिग खड़े थे वशिष्ठ ऋषि सामने, उसके दंडा सामने है, जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया वो भी खा गया। अभी तो इतना टेंशन कि पहले एक गाय और अभी एक डंडा, इसने मेरी तो पूरी मिट्टी पलीद करके रख दी है। क्या ब्रह्म ऋषि की शक्ति है। फिर वहां से निकले और दूसरी दिशा में जाकर इतना ब्रह्मा जी का तपस्या किया, इतना ब्रह्मा जी का तपस्या किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए, बोले ब्रह्म ऋषि बना दो मेरे को, मेरे को कोई शक्तियां नहीं चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक वशिष्ठ ऋषि, ऐसा ही मैं बनना चाहता हूं। बोले सॉरी अभी पॉसिबल नहीं, अभी आपको राज ऋषि जरूर बना सकते हैं। जैसे राज ऋषि बने उन्होंने बोला कम है, और तपस्या करेंगे जब तक ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाते। कहने का भाव है कि तपस्या से क्या मांग रहे हैं अभी तक विशिष्ट विश्वामित्र मुनि, भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू बिकमिंग समथिंग ऑल्सो, कुछ बनना, वो भी एक्चुअली में भक्ति नहीं है। भक्ति से हमको क्या बनना है, दास दासानो दास। कोई मेरे को किस, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं चाहिए। और जब विश्वामित्र मुनि जी को, कथा बहुत लंबी है, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन जब विश्वामित्र मुनि ने राज ऋषि की उपाधि की, इतनी तपस्या की, उस तपस्या के बल से उनको धीरे 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 उनके रास्ते में एक त्रिशंकु नामक एक राजा आया था, जिसके कारण उन्होंने अपने पूरे राज ऋषि का जो तपोबल था उसको समाप्त कर दिया। वो अपने अभी तक अहंकार को जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन जब त्रिशंकु के कारण उनका पूरा राज ऋषि की उपाधि भी जाने को आ गई, उस समय उनको समझ में आया कि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको कहा ब्रह्म ऋषि बनना है अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सबका त्याग करना पड़ेगा, इसके बिना आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। फिर उन्होंने और तपस्या की, लेकिन वो तपस्या के कारण भी उनके मन में ऐसा आ गया कि इस तपस्या से किसी का उद्धार करना चाहिए। उसको उद्धार करते करते उनका तपोबल और शून्य हो गया। सुना शिव की कथा आती है इसमें। और उसके बाद उन्होंने अपने अहंकार को तो जीत लिया, लेकिन अपनी काम वासनाओं को जीत नहीं पाए। इंद्र ने जब मेनका को उनके सामने भेजा, 10 साल का भोग किया उन्होंने उनके साथ, उस काम वासना के कारण उनका तपोबल शून्य हो रहा था। और जब उनको समझ में आया कि मैंने इतनी शक्ति को अर्जित किया और काम वासना ने मेरे को, मेरी शक्ति को इतना कम कर दिया, फिर और तपस्या किया। कहने का भाव है तप को छोड़ नहीं रहे हैं, वो प्रोसेस को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस के अंदर इतनी शक्ति है जो अहंकार, मोह, काम को समाप्त कर सकता है। काम को भी जीत लिया उन्होंने। ब्रह्मा जी को कहा अभी तो दे दो, बोले अभी थोड़े और टेस्ट बाकी हैं। और तपस्या किया। इंद्र इतना टेंशन में आ गया कि इतना तपस्या करेंगे, एक के बाद इतनी तपस्या करते जा रहे हैं, ऐसा ना हो मेरे सिंहासन को ही ले लेंगे। उन्होंने मेनका के बाद रंभा को भेज दिया और अंबा ने बोला आपको मालूम है ये इसका कहीं दिमाग विश्वामित्र जी का चढ़ गया तो मेरे को समाप्त कर डालेंगे। और एक्चुअली में उन्होंने रंभा को भी समाप्त कर दिया। क्रोध में आ गए कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपनी काम वासनाओं को जीतना शुरू कर दिया, क्रोध को जीतना शुरू कर दिया कि नहीं मेरे को अपने आप को संयम में रखना है, और तपस्या किया। इंद्र उनके सामने आए और इंद्र ने उनको ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने ऐसा व्रत लिया था कि कई सालों के बाद प्रसाद खाऊंगा। इंद्र उनके सामने आए, उनको कहा मेरे को भूख लगी है, और उन्होंने कहा किसी ने मांग लिया तो मैं आराम से वापस दे दूंगा। काम को जीत लिया था, क्रोध को जीतने के लिए बड़ा टेस्ट था, भाई इतने सालों के बाद अभी खाना खाने लगा हूं और तुम बीच में टपक गए। कभी ऐसा होता है ना, इतना फास्टिंग के बाद प्लेट सामने आई और कोई बोलता है प्रभु जी ये जरा मेरे को देना, देख मत इधर जलाकर राख कर दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ तो होता है, हम तो कभी कभी भूख लगी होती है भाई इधर मत देखना अपनी थाली में देखो। तो जैसे ही उनको बोला गया, बोले अभी क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्रोध से ऑलरेडी बहुत तपस्या करनी पड़ी है। दे दिया सर्वस्व, दे दिया उन्होंने अपना। और जब और तपस्या किया, ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले रेडी, Now you are ready to become Brahmarishi. अभी आप तैयार हैं ब्रह्मऋषि बनने के लिए. उनको ब्रह्मऋषि की उपाधि दे दी. जानते हैं एंड में क्या कहा उन्होंने? बोले आपने मेरे को ब्रह्मऋषि की उपाधि तो दे दी, लेकिन क्या वशिष्ठ ऋषि जी इसको मान्य करेंगे? क्योंकि प्रतिद्वंदी तो वो हैं. वो अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं मानता तो क्या फायदा हुआ? इतनी तपस्या का. बोले अभी कभी बुलाओ उनको. वशिष्ठ ऋषि जी वहां पर आए और वशिष्ठ ऋषि ने कहा, गले से लगाया, स्वीकार किया, बोले आप ब्रह्म ऋषि हैं. वशिष्ठ ऋषि जी के चरणों को धोया, 3 बार परिक्रमा की उनकी, और वशिष्ठ ऋषि जी को कहा, लास्ट में एक चीज मांगता हूं आपसे, देंगे आप? बोले बिल्कुल दूंगा, बताओ क्या चाहिए? बोले जो आपके चरण है ना, मेरे सर पे रखो. बोले क्यों? बोले रखो पहले. जैसे वशिष्ठ ऋषि जी के चरणों में उन्होंने सर पे उनके विश्वामित्र जी के सर पर चरण रखे, बोले हाथ पकड़ कर बोले, तौबा तौबा तौबा, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है? आप महान हो, आपके जैसा व्यक्ति संसार में नहीं, क्योंकि मेरे को अभी समझ में आया है, एक ब्रह्म ऋषि की उपाधि के लिए इतना कुछ कैसे करना पड़ता है. लेकिन उनकी जब पोजीशन को देखा, बोले कि वशिष्ठ ऋषि जी इतने ऊपर है मेरे से कि मैं अभी तक उनके सामने बराबरी भी कर नहीं पाया हूं. मन में विचार आ गया, मेरे को भी कुछ तो करना चाहिए. तब उन्होंने ये जीवन में निर्णय लिया, मैंने जो इतना कुछ कमाया है इस तपोबल के प्रभाव से, जितना ज्ञान तप अस्त्र शस्त्र सिद्धियां जो ली हैं, वशिष्ठ ऋषि जी ने उन सब सिद्धियों को, सब इच्छाओं को इक्ष्वाकु कुल के राम जी को अर्पण कर दिया है. मैंने क्या किया? उन्होंने तब ये कथा आती है कि कैसे वो महाराज दशरथ के द्वार पर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि राक्षसों का वध करने के लिए जहां पर मेरा यज्ञ चल रहा है वहां तक, उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए मेरे को आपके पुत्र राम की जरूरत है. तब वो राम जी को लेकर जाते हैं और एकांत में राम और लक्ष्मण के सामने अपना समर्पण करते हैं. सर्वस्व, जितनी योग सिद्धियां, जितना तपोदल बल, जितने अस्त्र शस्त्र उनके पास होते हैं, उनका सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं. और क्योंकि वो पूर्ण रूप से उनको अर्पण कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अभी, क्योंकि जितनी भी सिद्धियां, जितना भी हमारे को मिल जाए, लेकिन अगर उसको हम भगवान को अर्पण नहीं करते, वो शून्य है. क्योंकि वो जानते थे, वशिष्ठ ऋषि जी ने अपना सर्वस्व जो है वो इक्ष्वाकु कुल में राम जी को अर्पण किया है, मैं पीछे क्यों रहूं? और वो जानते थे वो कुल के मेन व्यक्ति तो बन गए, अभी मेरे को भी कुछ सेवा इस प्रकार से करनी है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा संबंध किसी ना किसी प्रकार से राम जी के साथ जुड़ना चाहिए. विश्वामित्र मुनि वो व्यक्ति थे जिन्होंने सीता मैया और राम जी को मिलवाया था मिथिला के अंदर. तो जब व्यक्ति अपनी भोग की इच्छा को अपने अंदर से समाप्त करता है ना, तब एक्चुअली में उसको मालूम पड़ता है मेरी गति कहां पर है. जब विश्वामित्र मुनि ने अपने अंदर से सब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तपोबल से, तपस्या के माध्यम से, और कलयुग में क्या तपस्या है, हम कई बार चलेंगे कई बार गिरेंगे, कई बार चलेंगे कई बार गिरेंगे, लेकिन हर गिरने के साथ हृदय से एकमात्र एक वाक्य निकलना चाहिए, एक मंत्र निकलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. क्योंकि ये एक महामंत्र कलयुग में तपस्या है. इस तपस्या के बल पर ही ये भोग को हम जो है अपने से दूर धकेल सकते हैं. अदरवाइज प्रभुपाद जी कहते थे देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है. इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के, भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से भोग करने की जो इच्छा हमारे मन में चल रही है, इस दावाग्नि को हम अपने बलबूते पर बुझा नहीं पाएंगे. वैष्णवों की कृपा, वैष्णवों के आशीर्वाद से, आपके संपर्क में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से ही इस भोग करने की इच्छा को दूर भगाया जा सकता है. हे श्रील प्रभुपाद, आचार्यगण, पूरी आचार्य प्रणाली, भगवान हमारे को इतनी शक्ति दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में भक्तों से दूर मत कीजिए. क्योंकि जब तक ये संपर्क में है तब तक हम भोग से दूर रह सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है ना, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटिए माया खड़े झपटिया धरे। एक बार भगवान और भक्तों से दूर हो जाएंगे, माया तो बिल्कुल पास में खड़ी है, झपट्टा मार के हमारे को ले जाएगी। हरे कृष्णा। सॉरी मैंने 5-7 मिनट ज्यादा ले लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सॉरी कुछ गलत कह दिया हो तो मेरे को माफ कीजिएगा।